आस्था ने खूब जमकर संजना को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। अब आगे वहीं संजना आस्था को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए मन ही मन यही सोच रही थी कि अभी तक उसके सिक्योरिटी गार्ड आस्था को पकड़ने के लिए ऊपर क्यों नहीं आए। फिर संजना आस्था को धमकी देते हुए फट से बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये बोलकर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग से झुकते हुए नीचे देखने लगी तो उसकी आंखें हैरानी के मारे चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसके सभी आदमी नीचे अधमरी हालात में जमीन पर पड़े हुए थे। टाइगर आकाश और सुमित अबीर वहां खड़े होकर अनमने ढंग से संजना को देख रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान तो अपना हाथ हिलाकर उसे चिढ़ा रहे थे। हेलो मिस संजना। सिक्योरिटी गार्ड की हालत देखते ही संजना का शरीर कांपने लगा था। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर सुन्न हो गए थे, मानो उनमें जान ही बाकी ना हो। संजना ने अपना सिर पकड़ लिया था। अब देर ना करते हुए फटाफट वो जैसे तैसे वहां से दुम दबाकर बाहर निकली। वहीं आस्था और बाकी सभी लोग अब थोड़ा घबराए हुए अरमान के पास आ पहुंचे। अरमान बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। वो लगातार कुछ न कुछ उटपटांग बातें बड़बड़ाए जा रहा था। आफत, मेरी आफत। तब आस्था ने अपनी नज़रें ध्रुव की ओर घुमाई और एकदम से बोली, ध्रुव जी, जल्दी से अरमान जी को चेक करिए। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने अरमान को चेक करना शुरू किया तो उसके चेहरे से एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसके माथे पर हल्का ठंडा पसीना छलका और वो एकदम से बोला, भाभी, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। भैया को किसी ने ड्रग्स दिया है और इस वक्त आपको ही उनकी मदद करनी होगी। जैसे ही ध्रुव ने नज़रें चुराते हुए ये कहा तो सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। वहां की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। आस्था ध्रुव की बातों का मतलब समझ चुकी थी। किसी तरह अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए वो सबकी ओर बेचैनी से देखकर रिक्वेस्ट करती है, आप लोग हमारी मदद कीजिए और अरमान जी को घर लेकर चलिए। तभी ध्रुव झट से बोला, नहीं भाभी, हम भैया को घर नहीं लेकर जा सकते। भैया की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो घर जा सके। भैया को आज की रात यहीं रुकना होगा। अब जैसे ही ध्रुव ने थोड़ी लड़खड़ाती हुई जुबान में ये कहा तो ये सुनकर आस्था की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। खुद के इमोशंस को छुपाते हुए आस्था ने ध्रुव को सिचुएशन समझाने की कोशिश की। देखिए ध्रुव जी, कोई तो रास्ता होगा, हम इस तरह से इस अनजान जगह पर नहीं रुक सकते। और वैसे भी अगर ये राजवीर जिंदल और संजना का मिला जुला प्लान है तो इसका मतलब साफ है कि वे एक बार फिर यहाँ हमला कर सकते हैं और हो सकता है राजवीर जिंदल भी यहाँ आ जाएं। अब जैसे ही आकाश ने आस्था के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसने हताशा से सांस लेते हुए कहा, ध्रुव, कुछ करो और अरमान को कम से कम इस लायक तो करो कि वो घर जा सके। अब ध्रुव ने गहरी सांस ली और देर न करते हुए फटाफट अपनी कार की ओर भागा। वो कार में हमेशा अपना जरूरी सामान साथ रखा करता था और उसके हाथों में एक ड्रग्स था। वो ड्रग्स उसने जल्दी से अरमान को इंजेक्ट किया और अगले ही पल आस्था और बाकी सबकी ओर देखते हुए बोला, ये इंजेक्शन भैया को केवल 1 से 2 घंटे तक ही शांत रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब ये सुनकर सबने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। उन सबकी दिल की धड़कन अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। देर ना करते हुए उन्होंने अरमान को कार में संभाल कर बैठाया और फटाफट सिंघानिया मेंशन की ओर स्पीड से कार चलानी शुरू कर दी। रास्ते में उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अब वे सबसे पहले इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर राजवीर जिंदल सिंघानिया एम्पायर क्यों आया था और वो अरमान से क्या बातें करके गया है। अगर राजवीर जिंदल अरमान से मिला था तो ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। फिलहाल उनके लिए अरमान की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी थी। देर ना करते हुए अब सब लोग एक के बाद एक सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। आस्था ने उन सभी को समझा दिया था कि घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि अरमान जी के साथ क्या हुआ था। ये तो उनकी किस्मत थी कि वक्त रहते उन्होंने अरमान को संजना की चुंगल से बचा लिया और उसे लेकर घर आ गए। सिंघानिया मेंशन के पिछले रास्ते से ध्रुव और टाइगर की मदद से आस्था अरमान को सीधा उसके कमरे में ले आई थी, उसी सीक्रेट दरवाजे से जहां से वो एक बार बाहर निकली थी। वहीं अबीर, आकाश और सुमिता हान, वे लोग इस वक्त नॉर्मल दरवाजे से घर में एंट्री ले चुके थे। फिलहाल अरमान को बेड पर लिटाकर आस्था को सब समझाने के बाद ध्रुव जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगा। तब आस्था ने ध्रुव को रोकते हुए पूछा, ध्रुव, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? उसकी आंखों में एक सवाल था। ध्रुव ने गहरी सांस भरकर आस्था से नजरें चुराते हुए हड़बड़ी में कहा, ये मेडिसिन आप कैसे भी करके भैया को दे दीजिएगा, इससे भैया कम वाइल्ड होंगे। इतना बोलकर वो बिना रुके वहां से फटाफट बाहर निकल गया। आस्था समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव आखिरकार क्या कहना चाहता था। वाइल्ड, जैसे ही उसने ध्रुव के वाइल्ड शब्द को 2 बार रिपीट किया तो एकदम उसे पूरी बात समझ में आ गई। फिलहाल जैसे ही आस्था ने दरवाजा बंद किया तो उसने देखा कि अरमान, जो थोड़ी देर पहले बेहोश था, उसे एक बार फिर होश में आने लगा और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ आफत। वो अपनी बेहोशी की हालत में बार बार एक ही बातें दोहराए जा रहा था। अब आस्था के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अंश की जिम्मेदारी आहान को दे दी थी और अंश भी आहान के साथ बहुत ज्यादा ही घुल मिल गया था। वो ज्यादातर उसी के साथ रहता था, इसलिए आस्था ने आहान को कहा था कि वो आज रात अंश का ख्याल रखें। इसलिए आहान ने सीधा जाकर अंश को अपनी गोद में ले लिया और बहला फुसलाकर उसे सुलाने लगा। आहान को अंश के साथ खुश देखकर रौनक का दिल अंदर ही अंदर ये समझ चुका था कि वो बिल्कुल सही सोच रही हैं। फिलहाल नानी माँ ने तो सख्ती से आहान, टाइगर और सबको मना कर दिया था कि अभी कम से कम एक महीने, जब तक ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से आराम करेंगी तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा और उन्हें अपने अपने पतियों को भी नहीं देखने दिया जाएगा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये फरमान जारी किया तो सब लोग आश्चर्य से चौंक गए थे। लेकिन तभी रश्मि तुरंत इस बात पर रिएक्ट करते हुए बोली, लेकिन नानी माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आहान रौनक को और टाइगर भैया मारिया दीदी को एक महीने तक नहीं देखेंगे? रश्मि के सवाल करने पर नानी माँ अग्रही पल अपनी हंसी दबाते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है भाई। आप लोगों को पता नहीं, जब अंश का जन्म हुआ था तब हमने दामाद जी को गोरी बिटिया को देखने से मना कर दिया था, लेकिन वो तो दामाद जी थे जो हमारी बात मानते ही नहीं थे और किसी ना किसी बहाने से हर रोज ही गोरी बिटिया के सामने चले आया करते थे और वहीं सो जाया करते थे। वो हमारी बात मानते ही कहाँ थे। ये कहते कहते नानी माँ हंस पड़ी। अब जैसे ही नानी माँ ने बातों ही बातों में आस्था और अरमान के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो वैसे ही सब मुस्कुरा दिए थे। लेकिन आज रौनक का दिल अजीब से भारीपन से भरा हुआ था। वो अपने पास लेटे हुए बेहद खूबसूरत, प्यारी, मासूम बच्ची को देखती है जो उसे अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी, जिसे महसूस करके रौनक के दिल में इमोशंस का तूफान मचलने लगा था। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था के साथ पूरी तरह से मुंह काला कर रहा था, मतलब वाइल्ड हो चुका था। इतने दिनों बाद अरमान को अपने पास पाकर आस्था ने इस बात की भी परवाह नहीं की वो क्या कर रहा है। उसने आस्था के साथ पूरी तरह से फिजिकल होना शुरू कर दिया था।
अब जाकर आस्था को ध्रुव की बात का मतलब समझ में आया। अरमान की आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर आस्था खुद को उसमें डूबने रोक नहीं पाई थी, क्योंकि जब तक अरमान के शरीर से वो ड्रग्स पूरी तरह खत्म नहीं होगा वो इसी तरह से बिहेव करेगा। लेकिन आस्था ने अच्छी तरह से अपने पति को पूरे ध्यान से संभाल लिया था। वहीं दूसरी ओर रौनक पूरी रात बेचैन थी। अंश बड़े ही इजी तरीके से आहान के पास सो गया था। उसने बिल्कुल भी आस्था को याद नहीं किया, क्योंकि आहान बिल्कुल एक माँ बनकर ही अंश को संभाला करता था। लेकिन अब रौनक के दिलो दिमाग पर एक अजीब सा एहसास हावी होने लगा था। कितनी ही देर तक वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ करवट बदलने के बाद भी सो नहीं पाई थी। हालांकि नानी माँ ने उसे कहा भी था कि उसे पूरी रात आराम करना है और अपना बहुत ध्यान रखना है, लेकिन रौनक के मन में बार बार आहान का अजीब तरह बर्ताव करना खटक रहा था। आहान का इस तरह का रिएक्शन देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल मारिया ने रौनक की बेचैनी को भांपते हुए पूछा, क्या बात रौनक, कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, आई एम हियर टू हेल्प यू। इस बात पर रौनक बस हल्का मुस्कुराई, लेकिन मारिया को कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। पूरी रात वो सही से सो नहीं पाया था। हालांकि आकाश ने उसे पूरी तरह से अपनी लेबोरेटरी दे दी थी और उससे कहा था कि वो चाहे तो उसके विला में रह सकता है। आखिरकार आकाश का शानदार विला उसके सिंघानिया मेंशन में रहने की वजह से खाली पड़ा था। आकाश ने बिना सोचे समझे अबीर से कह दिया था कि उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से उस विला में रह सकता है। और अबीर का इरादा भी सिंघानिया मेंशन में बिल्कुल भी रुकने का नहीं था, इसीलिए वो आकाश के विला में रहने के लिए मान गया था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। हालांकि उसने मन बना लिया था कि वो राजवीर जिंदल को सबक सिखाए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने मामूली तौर पर आस्था अरमान से दोस्ती की थी, लेकिन अब सही वक्त आ चुका था कि अपनी दोस्ती निभाने का, क्योंकि वो अरमान आस्था की ज़िंदगी को यूं ही बेरंग और बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता था। जब अबीर पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका था तब उसे राजवीर की तरफ एक चेतावनी मिली थी जो उसने किसी और से शेयर नहीं की थी। अबीर को राजवीर जिंदल ने वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें उसने उसकी जान लेने की धमकी दी थी। उसने उस वॉइस मैसेज में केवल इतना कहा था कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहता है तो वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। राजवीर की कठोर आवाज़ अभी भी अबीर के कानों में गूंज रही थी, लेकिन अबीर ने मन ही मन ठान लिया था चाहे कुछ हो जाए वो बिना हार माने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।